निरन्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुर्वे नमः। श्रीचैतन्यामनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयमरूपं कदा मह्यं ददाति स्वार्धकान्तिकम्। वन्देहां श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगन रघुनाथान्वितं तं सजीवं साधवैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगन ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमोम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे। हरे कृष्णा। तो आप सबका स्वागत है आज के इस कार्यक्रम भगवद गीता कक्षा में। तो धूप अधिक लग रही होगी आप लोगों को वहाँ बैठने में, इधर आ सकते हैं, यहाँ जगह खाली पड़ी है। सब लोग छाँव में आ जाएंगे और कुछ लोग ऊपर चले जाएंगे। तो चले अगली बार से हम क्लास अंदर की साइड कर लेंगे, सही रहेगा। हाँ, व्यास आसन का वो पद्दी सब कुछ ले आएंगे। तो इधर अजय माता जी आसन चाहे तो चल जाएगा। जितने आराम से होंगे उतना ज्यादा सुन पाएंगे समझ पाएंगे। तो आज हमारे भगवद गीता के तीसरे अध्याय ये 40वें श्लोक पर चर्चा करनी है। तो सब साथ में पढ़ेंगे। इंद्रियाणि मनोबुद्धिर् अस्य अधिष्ठानम् उच्यते एते विमोहयति एष ज्ञानम् अवृत्य देहिनाम्। इन्द्रियाणि मनोबुद्धिर् अस्य अधिष्ठानम् उच्यते एते विमोहयति एष ज्ञानम् अवृत्य देहिनाम्। इन्द्रियाणि मनोबुद्धिर् अस्य अधिष्ठानम् उच्यते
एते विमोयति एष ज्ञानम् अवृत्य देहिनाम्।
इसका अनुवाद पढ़ेंगे सब साथ में, बोलिए। इंद्रियां, मन तथा बुद्धि इस काम के निवास स्थान है, इनके द्वारा ये काम जीवात्मा के वास्तविक ज्ञान को ढक कर उसे मोहित कर लेता है। तो ये बहुत सुंदर श्लोक है, तीसरे अध्याय का 40वां, जिसमें बताया गया है कि जो काम है, हमारी जो इच्छाएं हैं, हमारी जो वासनाएं हैं, वो कहाँ पर वास करती हैं। तो उसके तीन स्थान बताए। पहला स्थान बताया है इंद्रियाणि, काम हमारी इच्छाएं वास करती है कहाँ पर, हमारी इंद्रियों में। दूसरा बताया है मनो, मन के अंदर वास करती है। और तीसरा है बुद्धि, बुद्धि में काम वासना वास करती है, इच्छाएं वास करती है। अधिष्ठानाम उच्चते, निवास स्थान इसे कहा जाता है। अधिष्ठानाम मतलब ये तीन, इसके निवास स्थान बताए गए हैं। एते विमोहिति एषा, और इन सब से मोहग्रस्त करता है कौन, एषा। एषा मतलब यह काम की चर्चा हो रही है। एषा शब्द का मतलब काम नहीं है, एषा मतलब यह, जैसे हिंदी में बोलते हैं ये। अब ये वस्तु स्त्री के लिए भी इस्तेमाल की जा सकती है, पुरुष के लिए भी, किसी निर्जीव वस्तु के लिए भी यह इस्तेमाल किया जा सकता है। ऐसी एषा मतलब कि यह काम, यहाँ पर काम की चर्चा हो रही है। ज्ञानम, ज्ञान जो हमारा भौतिक संसार का ज्ञान है। और अवृत्य, अवृत्य मतलब आवर्तन, किसी चीज को ढक लेना। देहिनाम, शरीरदारी व्यक्ति की ज्ञान को ढक लेती है, और इन तीन जगहों पर काम वासना हावी हो जाती है। लेकिन ऐसा नहीं कि तीनों 1 2 3 पैरेलल है, ये तीन अलग अलग स्थान है। 1 2 3 ऐसे नहीं, ये ऐसे क्रम में है। 1 2 3 पहले है इंद्रियाणि, फिर मन, फिर बुद्धि। तो उसको कैसे कैप्चर करती है बुद्धि को, वो पता चलता है कि जब भगवत गीता को अगर हम समझें कि हमारे जीवन को निर्देश करने वाला ग्रंथ है। भगवत गीता के अलावा जितने भी ग्रंथ संसार में प्रस्तुत हैं, जैसे श्रीमद् भागवतम, जैसे कि हमारे उपनिषद, पुराण, ये सारे उपदेशक ग्रंथ कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? उपदेशक ग्रंथ, जिसमें भगवान या भगवान के भक्तों के द्वारा उपदेश प्रदान किया गया। परंतु भगवत गीता को निर्णायक ग्रंथ कहा गया, निर्णय लेने वाला ग्रंथ। जीवन में क्या करने योग्य है, क्या करने योग्य नहीं है, अगर ये किसी को सीखना है तो कौन बता सकता है? भगवत गीता। जितने भी ग्रंथ है वो कहते हैं कि कैसे पूजा करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, मतलब अगरबत्ती कहाँ पकड़े, दिया कहाँ पकड़े, भगवान का मुकुट कैसे लगाएं, भजन कैसे गाएं। लेकिन भगवत गीता इसमें कोई चर्चा नहीं करती है। भगवत गीता सिंपल सी चर्चा करती है, जो कि निर्णय ग्रंथ है, हमें निर्णय लेने की शक्ति देती है। हमेशा मन विस्मित रहता है, क्या करूं क्या नहीं करूं, है ना। तो इसीलिए ये श्लोक इतना उत्तम है। जैसे मान लीजिए एक आदमी है जिसकी आंख पर काली पट्टी बांध दो, ब्लाइंड फोल्ड जैसे कहते हैं, और उसके बाद में उसको बोलो सामने क्या दिख रहा है, तो क्या वो अज्ञानी है? उसको नहीं पता सामने क्या है, लेकिन दिख नहीं रहा, क्यों? पट्टी बंधी हुई है। ऐसे ही हम सबको पता है सही क्या है, गलत क्या है। चोरी करना पाप है, झूठ बोलना पाप है, हरि नाम लेना अच्छा है, सबको मालूम है। लेकिन क्या बंधा हुआ है? ब्लाइंड फोल्ड बंधा है। जब परिस्थिति आती है तो अप्लाई नहीं कर पाते। तो भगवत गीता निर्णय ग्रंथ इसीलिए है, ये शिक्षा देती है कैसे व्यक्ति को उन विषम परिस्थितियों में इसको विज्ञान रूप में, इस ज्ञान को प्रैक्टिकली अपनाना है विज्ञान रूप में। तो इंद्रियां सबसे पहले काम आसक्त होती हैं। कोई व्यक्ति कितना भी बड़ा साधु, आप इतना टीवी देखते हैं, कितने साधु बाद में स्त्री गामी होकर, स्त्री लंपट होकर पकड़े जाते हैं। शरीर के अंदर से सब कुछ समाप्त हो जाता है, लेकिन अंत काल तक जो वसा रहता है व्यक्ति के अंदर, छह अनर्थों में से सबसे मुश्किल अनर्थ है चला जाना काम वासना। क्रोध शांत कर सकता है आदमी, मन पर काबू कर ले कि मेरा चरित्र ऐसा है, मैं क्रोध करूंगा तो लोग क्या कहेंगे, काबू कर लेता है। मालिक क्रोध में काबू नहीं किया है लेकिन परिस्थिति वश काबू हो जाता है कि अगर मैं गुस्सा करूंगा तो लोग कहेंगे गुरु जी आप ही गुस्सा करते हैं, तो हम कहां हमारे क्या कह सकते हैं, हम फिर कहां इससे लड़ पाएंगे। लोभ हो सकता है व्यक्ति खुद ना दिखा करके किसी के जरिए, जी हम तो लेते नहीं कुछ, आप उनसे बात कर लीजिए हमारे सेक्रेटरी से, वो लोभी है मैं लोभी नहीं, किसी ना किसी तरह से बच जाते हैं काम। लेकिन ऐसा है बचने नहीं देता है व्यक्ति, क्योंकि काम के भोगना ऐसे नहीं कह सकता मैं काम वासना मेरे अंदर है मेरा सेक्रेटरी भोग लेगा, उसे खुद ही भोगने की इच्छा है, इसलिए एक ऐसा अनर्थ है जो व्यक्ति को फंसा देता है संसार के अंदर। इसीलिए इतने भी संसार में लोग हैं वो देवी देवताओं की पूजा करते हैं, सिर्फ एक ही कारण है काम वासना इच्छा। इसीलिए भगवद गीता के 7वें अध्याय में वर्णन किया गया है, कामस्ते ते हत ज्ञानम प्रपद्यन्ते अन्य देवता। जो काम के वशीभूत होते हैं, कामस्ते ते हत ज्ञानम, अभी भी ये चर्चा हुई, ज्ञान काम वासना इच्छाएं हमारे ज्ञान को आवृत कर देती है, ढक देती है, नष्ट कर देती है। फिर क्या करता है, प्रपद्यन्ते अन्य देवता और दूसरे देवताओं की शरण में जाता है। एक राक्षस था वृत्रासुर, आप सब जानते हैं उसकी कथा। वृत्रासुर राक्षस ने क्या किया, मन में इच्छा जागृत हो गई कि पार्वती जैसी सुंदर स्त्री का भोग करूंगा। पहुंच गया किसके पास, कामस्ते ते हत्यागानम प्रपद्यन्ते अन्य देवता, कृष्ण को छोड़कर के सभी देवी देवताओं की शरण में जाने को तैयार है, क्योंकि पता है आशुतोष भगवान भोलेनाथ जल्दी प्रसन्न हो जाएंगे। वृत्रासुर चला गया जाकर के बोला, वृकासुर चला गया और जाकर के बोलता है कि हे भोलेनाथ मुझे शक्ति दीजिए। क्या शक्ति चाहिए, बोले जिसके सिर पे हाथ रखो वो भस्म हो जाए। शिव जी ने कहा तूने इतनी तपस्या करी है, अपनी गर्दन काटने के लिए तैयार है, तुझे आशीर्वाद देता हूं जिसके सिर पे हाथ रखेगा वो तुरंत भस्म हो जाएगा। तो शिव जी ने जब आशीर्वाद दिया, लेते ही क्या कहता है, शिव जी पहले तुमको भस्म करूंगा उसके बाद तुम्हारी पत्नी का भोग करूंगा, यही तो अभिलाषा लेके आया था। तो हम सब असुर हैं वृकासुर जैसे, जो किसी ना किसी, हो सकता है पार्वती नहीं चाहते हैं लेकिन पार्वती जैसा खजाना चाहते भी तो मांगते हैं, हे भोलेनाथ एक गाड़ी दे दो, हे दुर्गा माँ एक गाड़ी दे दो, बच्चे के स्कूल की इच्छा पूरी कर दो, बेटी की शादी करा दो, ये सभी तो इच्छा है, उन्हीं इच्छाओं का क्या कहते हैं टूटी हुई इच्छा अंश मात्रेण है उनकी, वही है भोगने की इच्छा ही है हमारी, बस हम पार्वती को नहीं चाहते हैं लेकिन हमारी मंशा वृकासुर जैसी है। वृकासुर ने कहा मैं आपका भस्म कर दूंगा, शिव जी आगे आगे भाग रहे थे, पीछे पीछे वृकासुर भाग रहा था। जब भागता रहा तो शिव जी घबरा गए, बोले आज तो ये खत्म करके छोड़ेगा, आगे आगे भोले बाबा पीछे पीछे वृकासुर। जब काफी दूर निकल गए तो वृकासुर ने जब नहीं माना, तीनों लोकों में घूम लिए शिव जी कैलाश से लेकर के स्वर्ग आदि लोकों तक, तो उन्होंने अपने भोलेनाथ ने अपने भगवान कृष्ण को पुकारा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम राम राम, इसे पुकारा। जैसे ही कृष्ण को पुकारा, कृष्ण वृक्ष के पीछे छुपे खड़े थे, भोलेनाथ को बोला क्या हुआ, भोले बाबा पुकार रहे हो, कहा मेरी ये इच्छा है प्रभु, मेरे पीछे ना वृकासुर पड़ा है, आज तो पसीने छुटा दिए इसने, मैं दुनिया का सबसे शक्तिशाली हूँ, संहारक हूँ, मुझसे भूत प्रेत किन्नर सब डरते हैं, मेरी शरण में आते हैं, लेकिन आज इसने मुझे डरा दिया है, भस्म करना चाहता है और पार्वती से विवाह करना चाहता है, कुछ करिए कृष्ण मेरी रक्षा करिए। राखे कृष्णा मारे के और मारे कृष्णा तो राखे के, अगर कृष्ण मारने पे आ जाएंगे तो कौन रक्षा कर सकता है, और कृष्ण रक्षा करने आए तो कौन मार सकता है, कृष्ण की शरण ले लिया तुरंत ही। कृष्ण ने कहा चिंता मत करो भोले बाबा आप छुप जाओ, पेड़ के पीछे छुपा दिया। सामने आए बोले वृकासुर कहां भागे जा रहे हो, कहा कृष्ण हट जाओ तुमसे मेरा कोई काम नहीं, आज भोले बाबा को नष्ट कर देना है। कृष्ण भगवान जोर जोर से हंसने लगे, बोले तुझे फिर से पागल बना दिया, बोले मतलब, बोले पहले भी कईयों को पागल बनाया है, कहता है आशीर्वाद दूंगा सिर पे हाथ रखोगे भस्म हो जाएगा, तुम्हें भी यही दिया है, कह रहा हाँ, कह रहे बस बन गए तुम भी पागल।
तो बोला ऐसे पागल कैसे बनाएंगे, इतने बड़े देवता हैं, देवों के देव महादेव, पागल बनाते हैं क्या, झूठ बोलते हैं। कहा मैंने कई बार मना किया ये सब काम करना ठीक नहीं, लेकिन आजकल शैतान है ऐसी बातें कर लेता है, झूठे आशीर्वाद देता है। कहा इस बात की क्या पुष्टि है कि झूठा आशीर्वाद है। कहा एक बात बताओ, अगर किसी में भस्म करने की शक्ति होगी तो अगर वो अपने सिर पे हाथ रखेगा दूर से तो उसको थोड़ी सी गर्माहट का एहसास होगा, हीट एंड लाइट, तो यहाँ रखो, अगर गर्म लगेगा तो हटा लेना, जलना मत। कह रहा ठीक है यहाँ रखा, गर्म लगा, बोले नहीं वो मैंने पहले ही कहा था झूठा है। कहा थोड़ा नीचे करके देखो यहाँ किया, बोले आप लगा, बोले और नीचे लाओ आप लगा, मैंने पहले ही बोला कृष्ण बोले। जब उसको विश्वास हो गया कि हाँ ये सच बोल रहे हैं तो बोला कृष्ण भगवान ने कहा अरे छूकर भी देख लो, होने वाला कुछ नहीं, मैं बोल रहा हूँ मैं खड़ा हूँ यहाँ पे। तो तुरंत उसने जैसे ही छुआ क्या हुआ, तुरंत भस्म हो गया, वृकासुर का नाम पड़ गया भस्मासुर। तो क्यों गया था, इच्छाओं की पूर्ति के लिए, है ना। तो कामस्तेते हत ज्ञानम प्रपद्यन्ते अन्य देवता, अन्य देवताओं की शरण में जाते हैं। और इस काम की शुरुआत होती है कहां से, इंद्रियाणि। नाक कुछ अच्छा सूंघना चाहेगी, किसी स्त्री के सुगंध से ही आकर्षित हो जाएगी। अरे वो स्त्री जो परफ्यूम लगाती है ना, अरे वो तो कौन से आते हैं, पासपोर्ट आता है ना परफ्यूम, पासपोर्ट की खुशबू तो मेरा पासपोर्ट निकाल डालती है। आंखें, उसका रूप सौंदर्य का दर्शन करने के लिए वो व्यक्ति 8 बजे भागा भागा चला जाएगा, बस एक बार उसके रूप का दर्शन हो जाए, उसको देख लेता हूं ना तो आंखें संतुष्ट है, चाहे कुछ ना करे आंखों से भोग रहा है। और आप देखते होंगे नियमित कितने लोग आंखों से भोग रहे हैं, दूसरी स्त्री को, स्त्री पुरुष को आंख से भोग रहे हैं। कान का विशेष श्रवण, उसके बारे में कुछ बात पता चल जाए, उसकी कोई इंफॉर्मेशन मिल जाए जिससे मैं प्रेम करता हूं, मैंने व्यक्त नहीं किया है, अव्यक्त रूप में है, परंतु उसके बारे में बात करने में बड़ा रस आता है इन कानों को, उसी की चर्चा होनी चाहिए। इंद्रियां, इंद्रिया के बाद में मन, मन इतना हो जाता है कि अब मन नियंत्रित करता है इंद्रियों को। आपको मन पता है कि लहसुन प्याज खाना ये तमोगुनी है। मैं एक दिन पढ़ रहा था पुराण में लिखा है अगर कोई व्यक्ति लहसुन प्याज खा के 27 दिन, मतलब एक दिन खाया 27 दिन के अंदर अंदर अगर मर जाता है, एक दिन खाया बाकी 26 दिन नहीं खाया, एक दिन लहसुन प्याज खा के 27 दिन के अंदर अंदर अगर अपने प्राणों को त्यागता है तो उसको नर्कवास मिलता है। मतलब एक प्याज का, लहसुन का असर 27 दिनों तक शरीर पर रहता है, और जो रोज खा रहा दिन में 3 बार, सोचो जरा उसकी स्थिति, नर्क जाएगा नहीं जाएगा, पहुंचा हुआ ही है, नर्क की जीवन है उसका। छोले भटूरे के ऊपर छोले भटूरे का कोई स्वाद नहीं है, प्याज का ही स्वाद है। नहीं भिंडी खाइए, बोले नहीं प्याज ही खाते हम तो, भिंडी सब्जी नहीं, प्याज सब्जी, रोज प्याज सब्जी, प्याज सब्जी कुछ भी बना लो, मटर पनीर प्याज प्याज प्याज। औषधि है बोलते हैं, औषधि है क्या करें, अरे संसार में क्या एक ही औषधि बची है क्या, इतना बड़ा एम्स इंस्टीट्यूट है, लहसुन प्याज बिकता है क्या, तो सारे डॉक्टर छुट्टी कर दो, लहसुन प्याज में ही सब कुछ है, तो क्यों इतना बड़ा इंस्टीट्यूट खोल के रखा है। औषधियों में से एक है, औषधि खाली एक नहीं है, औषधियों में से एक है। हाँ ठीक है, होगी किसी ने बोला होगा, लेकिन आयुर्वेद में भी ऐसा कोई ग्रंथ वर्णन नहीं करता कि लहसुन प्याज नहीं खाएगा तो वो व्यक्ति जी नहीं सकता है। हमने नहीं खाया पूरे जीवन, 40 साल हो गया मैं तो जीवित हूं, अच्छा खासा घूम रहा हूं, कौन सी चीज की कमी है मेरे जीवन में। ये सब हमारी मनोवृत्ति, यही है मन, इंद्रियों के परे मन, मन ज्ञान को ढक के रखता, मन मानेगा ही नहीं, अरे ऐसे कैसे, फिर तो घर वाले बोलेंगे कैसा स्वाद है, कैसे खाएंगे, हमने तो कभी खाया ही नहीं, पतिदेव नाराज, पत्नी जी नाराज, बच्चे जी नाराज, कैसे होगा प्रभु जी, प्रभु जी ऐसा तो बड़ा मुश्किल है, हम अपना अपना बना लें, उनके में डाल दें, कच्चा डाल लें, कैसे, मतलब मन इंद्रियों को लगाएगा, इंगेज करेगा, ढक के रखेगा। और फिर एक समय ऐसा आता है बुद्धि भी नष्ट हो जाती है, बुद्धि भी नष्ट हो जाएगी। अब बुद्धि नष्ट हो गई उसके बाद तो प्रणश्यति, खत्म हो जाता, समाप्त हो जाता है व्यक्ति। तो इसलिए बुद्धि नष्ट होने से पहले आपके पास मौका है कि बुद्धि को तेज करो। जैसे अगर पेंसिल से लिखते लिखते पेंसिल टूट जाए नोक तो क्या करते हैं, शार्पनर में डालेंगे कि नहीं, उसी से लिखते रहे, घिसते रहेंगे, बिल्कुल उसका सिक्का मुंडी टुंडी तोड़ डालेंगे उसकी, क्या करेंगे, या तो ब्लेड से या चाकू से या शार्पनर से। तो अगर किसी व्यक्ति को पता है, उसको ज्ञान तो है लेकिन काली पट्टी लगी हुई है, देख नहीं पा रहा। वो कह रहा हमने सब सुना इस कौन में, लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए, शराब सिगरेट नहीं पीना चाहिए, व्यक्ति को हरि नाम का जाप करना चाहिए, पर टाइम नहीं मिलता है, टीवी है, बीवी है, बहुत सारी चीजें, कैसे करें हम हरि नाम, हो नहीं पा रहा हमसे। तो ऐसे व्यक्ति को बुद्धि को उस समय समझना चाहिए कि अब ये काली पट्टी खोलने का समय आ गया है। जब तक नहीं खोलेगा तब तक वो, अगर दिन निकल गया, समय निकल गया, तो प्रणश्यति, फिर एक बार नीचे जाने के बाद ऊपर आना मुश्किल है। तो उसको समय रहते अपनी बुद्धि को शार्प करना है। कैसे शार्प होगी? भगवान ने गीता में वर्णन किया है 9वें अध्याय में, तेषां सतत युक्तानां, जो व्यक्ति मेरे भजन में सतत रूप से लगा है, तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीति पूर्वकम्, और मेरा प्रीति पूर्वक बड़े प्रेम से भजन करता है, तो मैं क्या करता हूँ, ददामि बुद्धि योगम तम, मैं उसको बुद्धि देता हूँ। क्या मिल गई? यही तो चाहिए थी, जो लग नहीं पा रही थी, मन को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी, इंद्रियों को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। आदमी कहता है प्रभु जी चाहते तो बहुत है, हो नहीं पा रहा। कहते हैं कि नहीं कहते हैं? कितने लोग बोलते हैं इस बात को, हाथ खड़े कर बताइए, चाहते तो हैं प्रभु जी, हम भी आपकी तरह गीता पढ़े बोले हर दिन इसमें लगे, लेकिन हो नहीं पाता, क्योंकि बुद्धि अभी हमारी प्रबल नहीं है, प्रगाढ़ नहीं है, बड़ी अपरिपक्व अवस्था में है, कोमल बुद्धि है। उसको, उसकी श्रद्धा को परिपक्व श्रद्धा में परिवर्तित करने के लिए, तेषां सतत युक्तानां, युक्त होना है सतत रूप से। सुबह उठे तो जप, दोपहर में टाइम मिले तो भगवत गीता, रात को टाइम मिले तो महाभारत, रामायण, भागवतम, जो जब सब मिले इंगेज। नहीं कुछ कर सकते तो कान में ईयरफोन लगाकर कथा सुन लो, वो नहीं कर सकते हैं तो दो लोगों के साथ बैठ के चर्चा कर लो। तेषां सतत युक्तानां भजताम प्रीति पूर्वकम, भजन करो प्रीति के साथ, नियम के साथ नहीं, नियम नहीं करना है, प्रीति पूर्वक भजन करना। लोग नियम तो बन जाता है, नियम ले लेते हैं अपने जीवन का कि अब हमने ले लिया है नियम, 16 माला लगेंगे, 8 माला करेंगे, लेकिन नियम नहीं है। भजताम प्रीति पूर्वकम, पीछे प्रीति भी होनी चाहिए। जब प्रीति होगी तो क्या होगा, ददामि बुद्धि योगम तम, मैं उसे बुद्धि दूंगा। कौन सी बुद्धि? ये नमामुपियन्ति ते, मुझे कैसे प्राप्त किया जाए। सरल है कि नहीं है? बहुत सरल है। करना क्या है? सतत युक्त रहना। अब वो नहीं हो पाता, काम इतना खतरनाक है। एक बार राजा अकबर ने और बीरबल में चर्चा हो गई, 6 प्रकार के अनर्थ हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर। काम को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं सारे लोग बोलते हैं, लस्ट। क्रोध को क्या कहते हैं, एंगर। काम, क्रोध, लोभ, लोभ को क्या बोलते हैं, ग्रीड। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अफेक्शन, अटैचमेंट। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मद, मद इज मद, प्राइड, यस, प्राउड, प्राइड, मद, प्राइड, और मात्सर्य, जेलेसी, यस, जेलेसी, जलन की भावना। तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य, ये 6 प्रकार के अनर्थों में से अकबर ने बीरबल से पूछा कौन सा ऐसा है जो अंतिम समय तक रहता है, जाता नहीं है। उन्होंने कहा काम। तो उन्होंने कहा इसका कोई पुष्टि दे सकते हो? बोले जी ऐसे कैसे पुष्टि दूं, वैसे तो अनेकों उदाहरण है, ययाति महाराज का उदाहरण है, शिव जी का उदाहरण है, परंतु मैं आपको प्रैक्टिकल समझाऊंगा, क्योंकि आप मुस्लिम राजा हैं, आप कैसे समझेंगे। कहा ठीक है, बताइएगा किसी दिन। तो उन्हीं के राज्य का एक सेनापति बहुत बूढ़ा था, रिटायरमेंट ले चुका था 20 साल पहले, और उसका अंतिम समय आ गया। तो राजा अकबर बड़े दयालु थे, उनकी पत्नी जोधा भाई भगवान कृष्ण की भक्त थी। राजा अकबर से अनुरोध किया गया कि राजा अकबर चलिए। बीरबल ने कहा अब हमारे ही 80 साल के एक बुजुर्ग वर जो पहले सेनापति थे, बड़े कौशल से उन्होंने हमारे युद्धों को विजय प्राप्त कराई, चलिए उनको देखने चलते हैं, उनका अंतिम काल आ गया। जब पहुंचे, अब अंतिम काल में उसे पता है कि मुझे अनेकों प्रकार के व्याधियों से ग्रसित हूं, लेकिन ऐसे अवस्था में भी राजा अकबर को बीरबल ने बोला अपनी पुत्री को ले चलिए जो कि 17 वर्ष की है। बोले अरे मृत्यु की जगह पे पुत्री का काम? बोले आप चलिए तो लेकर के। बोले ठीक है बीरबल, तुम हमारे बड़े प्रियो, तुम जो कहते हो करते हैं। अपनी युवा पुत्री को लेकर के राजा अकबर वहां पहुंचे। जो बूढ़ा व्यक्ति था उसने राजा अकबर को नहीं देखा, उसने बीरबल को नहीं देखा, अपने पास खड़े लोगों से पूछता है ये लड़की कौन है। ये नहीं बोला अरे आज राजा अकबर क्यों आए हैं, बीरबल क्यों आए हैं, क्या मैं मरने वाला हूं, क्या पूछ रहा है ये लड़की कौन है। इंटरेस्ट अभी अंदर बाकी है लाइफ में। सूक्ष्म रूप में हो सकता है कोई व्यक्ति बाहर से बाहरी आवरण से करना बात करना दूर रहना, लेकिन अंदर की वृत्ति को कौन परिवर्तित कर सकता है। इसीलिए देवी देवताओं की पूजा करने से आपको हो सकता है सब कुछ प्राप्त हो जाए, लेकिन वृत्ति को परिवर्तित करने की शक्ति केवल भगवान श्री कृष्ण के भजन में है। इसका निरंतर भजन करना है और साथ में एक चीज याद रखनी है, अवैष्णव अभक्त का जो त्याग करना है, जो व्यक्ति वैष्णव नहीं है जो अभक्त है उसका त्याग करना है। यही वैष्णव आचार, वैष्णव का यही आचरण है, असत्संग त्याग यही वैष्णव आचार। जो व्यक्ति सच में कृष्ण को प्राप्त करना चाहता है उसको अवैष्णवों का अभक्तों का संग पूर्ण रूप से त्याग देना चाहिए। तो बोले और नौकरी करते हैं साथ में बहुत सारे लोग होते हैं प्रभु जी, तो कैसे उनको त्याग दें? उनसे उतनी चर्चा करें जितनी आपके कार्य में आगे मदद करती है, आपको ऑफिशियल बात तो करनी है बस। मेडिसिन कहाँ रखी है, सिरिंज कहाँ है, वो वाली फाइल कहाँ है, उनसे ज्यादा चर्चा मत करो और बेटी के लिए क्या सोच रहे हैं, बेटे के लिए लड़की मिली। जैसे आपने आगे बातें बढ़ाई घुलना मिलना प्रारंभ हुआ, भजन कच्चा होने लग जाएगा। एक तरफ से आपने घी डाल रहे हैं आग में और एक तरफ से पानी का पाइप डाल रखा है, बताइए आग जलेगी? बेहतर तो भक्ति जलाना चाहते हैं, घी डालते हैं उसमें हरी नाम का रोज आहुति डालते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, और दूसरी ओर से पानी डालते हैं, टीवी देख रहे, पिक्चर देख रहे, बातें कर रहे, फोटो देख रहे, अखबार पढ़ रहे, उसमें स्त्री का चित्र देख रहे, स्त्री पुरुष का चित्र देख रही है, उसमें बड़े बढ़िया कपड़े देख रहे हैं, आसक्ति देख रहे, सब चीजें देख रहे हैं, एक तरफ पानी एक तरफ घी, पानी घी पानी घी पानी की आग बुझ जाएगी। फिर बोले यार 20 साल हो गए भजन तो बना नहीं, भगवान मिले नहीं, ये सब झूठ है, माइथोलॉजी सब झूठ है, तुमने प्रोसेस को सही से फॉलो नहीं किया। जिसको डायबिटीज होती है डॉक्टर कहता है तुम्हें डायबिटीज है, दवाई भी खाओ साथ में परहेज भी करो, चावल मत खाओ, आलू मत खाओ, मीठा मत खाओ और गोली भी खाओ। तो हरिनाम रूप गोली भी खाओ और साथ में परहेज भी करो, अवैष्णव संग त्याग यही वैष्णव आचार। वैष्णव का आचार है कृष्ण को प्राप्त करना, उन लोगों से कम चर्चा करो, मिलो जुलो प्रेम पूर्वक प्रचार करो, बात करो, घुलो मिलो नहीं, वो आपकी भक्ति छिना देंगे आपसे। तो ये काम इच्छा जो है ना, काम वासना, ये बड़ी प्रबल है, जाती नहीं अंत समय तक, अगर ये चली जाए तो बहुत बड़ी कृपा होती है ठाकुर जी की। एक बार एक भक्त श्रील प्रभुपाद जी के पास गए, बोले प्रभुपाद मुझे लगता है मैंने सब कुछ प्राप्त कर लिया है, मैं मंदिर में ब्रह्मचार्य का पालन करने के लिए तैयार हो गया हूं, परंतु मन में से काम वृत्ति जाती नहीं, क्या करूं प्रभुपाद? तो स्वामी प्रभुपाद इस्कॉन के संस्थापक आचार्य थे, स्वामी प्रभुपाद जी ने कहा नहीं जाती है वृत्ति, प्रयास करो, हरिनाम को ध्यान पूर्वक करो और पानी डालना बंद कर दो, उन चीजों को देखना बंद कर दो जो तुम्हारी काम वृत्ति को उजागर करती है, देखो मत। हाँ ठीक है। फिर दो तीन महीने बाद फिर मिले प्रभुपाद जी से, जब वो तो बोले स्वामी प्रभुपाद अभी भी मैं बड़े ध्यान से जप करता हूं, मैं ऐसा कोई कार्य नहीं करता हूं जो मेरी काम वृत्ति को उजागर करे, लेकिन फिर भी वो वासना हृदय से जा नहीं रही है। गुरु से सब कुछ बोल देना चाहिए, न बोल दिया। फिर स्वामी प्रभुपाद ने कहा ध्यान से शास्त्र पढ़ो, ठीक है अब जब भी करता ध्यान से शास्त्र भी पढ़ता, फिर भी वृत्ति नहीं गई। फिर तीसरी बार मीटिंग में बोले अब क्या करूं, तो स्वामी प्रभुपाद जी ने कहा ध्यान से कथा का श्रवण करो। तो उसने तीनों काम शुरू कर दिए, ध्यान से जप करने लगे, ध्यान से शास्त्र पढ़ने लगे, ध्यान से श्रवण करने लगे, फिर भी वृत्ति नहीं गई। तब स्वामी प्रभुपाद के बाद चौथी बार आए, उन्होंने कहा प्रभुपाद जी मेरी काम वृत्ति जाती नहीं, करूं क्या? स्वामी प्रभुपाद जी बोले हरि इच्छा। अब कौन बचा सकता है? हरि इच्छा। इतने सारे सेमिनार होते हैं हाउ टू कंट्रोल योर माइंड, है ना, सेमिनार होते हैं मंदिर में, एक बोर्ड लगा तो देखना 2000 लोग ऐसे आके बैठ जाते हैं, हाउ टू कंट्रोल, किसी भी जगह पोस्टर लगा दो आर्ट ऑफ माइंड कंट्रोल, भर जाता है वहां पे सेमिनार। दुनिया माइंड को कंट्रोल करना चाह रही है लेकिन माइंड कंट्रोल होता नहीं, किसको कंट्रोल करना है? मन ही तो माइंड है, वही बोल रही है आप भी, किसको कंट्रोल करना है? हाँ जी, इच्छाओं को, होती का कंट्रोल क्या करें, इंद्रियों होती कहाँ है, भागती है, अभी तो बताया अंतकाल तक काम वासना भाग रही है। बुद्धि को शार्प करें, बुद्धि शार्प करने के लिए क्या करना पड़ेगा? बुद्धि कैसे शार्प होगी? शास्त्र का अध्ययन नहीं, सतत युक्तानाम। और सतत युक्त होने का मतलब जरूरी नहीं कि बुद्धि शार्प हो जाएगी।
हरि इच्छा, प्रभुपाद ने कहा
सतत युक्त जब हो गए कृष्ण प्रसन्न हो गए। मन किसने बनाया? कृष्ण ने। अगर मन को कंट्रोल करना है तो किसको बोल दो? कृष्ण को बोल दो। मान लीजिए किसी के घर में कुत्ता भौंक रहा है, वाह 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 वाह, आप गए चौमी चौमी बिस्किट बिस्किट, हेलो हेलो सिटी, हेलो हेलो बोल रहे हो, वाह 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 वाह, भौंके जा रहा है, क्या करना चाहिए? मालिक को बुला लो। बोले मालिक, अपने कुत्ते को बोलेगा हे चौमी गो इनसाइड, वापिस चले जाएगा। सिर्फ एक काम करना, मालिक को बोलना है, कृष्ण को बोलो माया रूपी बंद करो, अपने भोगना जो भोग रही है ना इसको बंद करवाओ, मन को बंद कर बचाओ, ठाकुर जी से बोल दो। इसलिए भगवान ने कहा देवी एषा गुणमयी मम माया दुरतया माम एव या प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते। देवी ऐसी गुणमयी, इस देवी के अंदर ये माया देवी दुर्गा, इसकी जो काम, इसकी जो विस्तार रूपी है, इसको कंट्रोल करना नमुमकिन। मम माया दुरत्तया, आउट ऑफ माइंड कंट्रोल कर करके मर जाते, माइंड कंट्रोल नहीं होता जी। मम माया दुरत्तया, करना क्या है? माम एव या प्रपद्यन्ते, जो मेरे शरण में आएगा माया में ताम तरन्ति ते, उसका मन भी कंट्रोल होगा, माया को भी पार करेगा, इंद्रिया भी कंट्रोल हो जाएंगी और बुद्धि भी शार्प हो जाएगी। कृष्ण को प्रसन्न करना है, इसीलिए जब जप करें तो ये नहीं सोचना चाहिए मेरे मन में बड़े विचार आ रहे हैं प्रभु जी आजकल हम जप करते हैं ना, इतने विचार आते हैं। हम सोचते विचार को कैसे कंट्रोल करें, विचार को कंट्रोल करना ही नहीं, आपसे होंगे ही नहीं, अगर हो सकते तो आप कर ही नहीं लेते। करना किसको है? हरि नाम लेते वक्त कृष्ण को प्रसन्न करना है। हरि की इच्छा होगी, कृष्ण अगर प्रसन्न हो गए तो वो मन अपने आप वश में हो जाएगा। मन का अधिष्ठाती देवता है चंद्रमा, चंद्रमा को वश करना है तो 33 करोड़ देवी देवता वश में हो जाएंगे, खाली कृष्ण को प्रसन्न करना। एक बार जब समुद्र मंथन हुआ तो समुद्र मंथन में भगवान कृष्ण ने एक बहुत सुंदर रूप धारण किया था, जिससे अमृत कलश लेकर के देवताओं में और राक्षसों के बीच बांट दिया। तो भगवान का कौन सा रूप था? क्या था? मोहिनी रूप। देखा है आपने? देखा है, सुना है आपने, वर्णन सुना है। मोहिनी रूप का वर्णन भागवत में ऐसा है, पढ़ने वाला व्यक्ति घबरा जाएगा देख करके, इतनी सुंदर स्त्री कहां होती है? अप्सराएं फेल, उसके सामने अप्सरा दासी जगती है ऐसे देखने में मोहिनी रूप के आगे। और नारद मुनि ने वर्णन किया शिव जी को, पता है शिव, जब समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ सबसे पहले विष निकला, भगवान कृष्ण ने विष का प्याला तुमको दे दिया। कहा हाँ जी मुझको दिया। बोले बताओ, और अमृत निकला तो तुम कहां चले गए थे? देवताओं की लाइन में से सभी देवी देवता पी रहे थे, तुम कहां गए थे? बोले मैं तो अपना वो जहरी डाइजेस्ट कर रहा था, यहां गले में अटका रखा था, नाम पड़ गया नीलकंठ महादेव, मेरे पास टाइम कहां था अमृत पीने का? मान लो कभी कड़वा कुछ पी लो उसके बाद खाने का मन नहीं होता बहुत देर तक, बोले अमृत पीने का टाइम ही कहां था मेरे पास? बोले अच्छा, तो तुमने वो रूप भी नहीं देखा होगा? नारद मुनि ने कहा मोहिनी रूप भगवान ने जो धरा। बोले अच्छा, एक और अवतार रख लिया, बड़े लीलाधारी हैं। पहले तो रखा था उन्होंने वासुकी नाग के अंदर प्रवेश किया, मंदराचल पर्वत की ही रई बनवाई, क्षीर सागर के अंदर विराजमान हुए, उसके बाद कच्छप बनकर के कच्छप अवतार लेके अपने पीठ पे धारण किया। जब समुद्र मंथन प्रारंभ हो गया तो उसमें से अमृत जब निकला तो देवता और राक्षस भागे कि हम पिएंगे कि हम पिएंगे। गरुड़ लेकर के भाग गया कुंभ को लेके, चार स्थानों में उस कुंभ में से अमृत गिर गया, वहां कुंभ मेले लगने लग गए। कहां कहां गिर गया? हरिद्वार, नासिक, प्रयाग, उज्जैन, चार जगह पर उस कुंभ की बूंदे गिर गई तो वहां पर कुंभ मेला लगने लगा, अमृत बहने लग गया। फिर भगवान ने गरुण से उस कुंभ को वापस पुनः प्राप्त किया मोहिनी रूप लेकर के। मोहिनी रूप को देखकर सारे राक्षस वशीभूत हो गए, किसके? काम के, फंस गए काम के। स्त्री देख करके चुप, देवता भी चुप, एकदम सहम, वैसे सहम सहम गए ऐसे। लेकिन देवताओं को पता था कि ये मोहिनी है भगवान विष्णु, इसलिए वो देखकर आकर्षित तो हो रहे थे लेकिन बेबुद्धि नहीं हुए कि एकदम गिर पड़ जाएं। और सारे राक्षस तो तू हट पीछे घुसा, एक दूसरे को मारपीट चालू हो गई, मैं करूंगा विवाह इससे। उन्होंने कहा विवाह करूंगी सबसे, सबके साथ भोग करूंगी, लाइन बना के बैठ जाओ। तुरंत ऐसे एकदम जैसे डंडा देखकर कुत्ता बैठता है ऐसे बैठ गए सारे राक्षस लाइन में, इधर देवता बैठ गए। तो देवता बोले अमृत पहले किसको पिलाओगी? कहा पहले देवताओं को। बोले हमको क्यों नहीं? का देखो, हर एक लिक्विड जो होता है, तरल पदार्थ का एक गुण होता है, उसका जो तरलता है वो ऊपर होती है, उसकी जो अंदर की मलाई होती है वो नीचे होती है। चीनी ठंड होता है ना, जब पीते हैं जूस तो ऊपर ऊपर पियेंगे तो पानी पानी आएगा, नीचे से फिर फालूदा निकलता है। तो बोले तुमको अंदर का गुहेतम पिलाऊंगी, राक्षसों को, इनको पानी पानी पिला देती हूँ देवताओं को। अब बेवकूफ तो देवता फंस गए स्त्री की बात, क्योंकि वो राक्षस बेवकूफ थे, क्योंकि वो फंस गए उसके चक्कर में, बातों में उसके रूप को देखते रहे, वो समझ नहीं पा रहे थे कि अमृत में ऐसा फालूदा वालूदा कुछ होता नहीं है। लेकिन वो बोले, इतनी सुंदर लड़की बोल रही है तो बात तो ठीक ही कह रही होंगी मैडम है। तो उठाकर के कुंभ धीरे धीरे डालना प्रारंभ किया। अभी सब पी रहे हैं, रसपान कर रहे हैं, इतने में एक राक्षस था राहु केतु, वो बीच में आकर के बैठ गया सूर्य और चंद्रमा के। अभी देखिए उसकी मूर्खता, आकर के भी बैठा तो कहां बैठा, भगवान के दो नेत्र है, एक सूर्य और एक चंद्रमा, यहां आकर के मक्खी बैठ जाए तो नहीं देख पाओगे, यहां बैठ जाए तो फिर भी नहीं दिखेगी, यहां बैठ जाओ नहीं दिखेगी। वो आके के बैठा सूर्य और चंद्रमा नामक यहां भगवान के नेत्र के बीच में। जैसे ही भगवान ने उसको पिलाया, उसने पी लिया, तुरंत चिल्लाए सूर्य और चंद्र, अरे ये तो राक्षस था प्रभु, क्या किया इसको पिला दिया। अब भगवान ने सुदर्शन देखे काट दिया। तब से वो दुश्मन बन गया राहु केतु, दो धड़ बन गए और एक गर्दन बन गया, सूर्य और चंद्रमा के क्या बन गए, दुश्मन। इसीलिए जब भी ग्रहण काल आता है तो चंद्रमा को राहु खा जाता है। कितनी देर खाता है, जितनी देर मुंह से लेके गर्दन तक, क्योंकि नीचे धड़ तो है नहीं, डाइजेस्ट तो होगा नहीं, वापिस बाहर आ जाता है, और जितनी देर मुंह से लेके गर्दन तक रहता है उतनी देर लोग बोलते हैं अरे चंद्र ग्रहण लग गया, दिख नहीं रहा। जितनी देर सूरज मुंह से यहां तक रहता है बोलते सूर्य ग्रहण लग गया, सूर्य ग्रहण लग गया, चंद्र ग्रहण लग गया। तो भगवान ने अपना जो मोहिनी रूप रखा, जब ये वर्णन पूरी लीला का शिवजी ने सुना, शिवजी बोले जब कृष्ण के पास जाता हूं और बोलता हूं प्रभु आपके सारे अवतारों में मैं आया, जब आप कृष्ण बने तो भी मैं आकर के मैंने इंतजार किया, नंदगांव में आपका दर्शन पाया, अशेश्वर महादेव बनकर विराजमान हुआ। जब आप महावन में थे तो महावन में भी मैंने वहां पर आकर के विराजमान हुआ, मैंने आपके दर्शन पाए। जब आप राम बन के आए तब भी मैंने आपका दर्शन पाने के लिए आया। जितने भी आप रूप लेते हैं उस रूपों में शिव, क्योंकि वैष्णवा नाम यथाम शंभु, भक्तों में सबसे अग्रणी है, कृष्ण का दर्शन पाने के लिए हमेशा वे तैयार रहते हैं। तो बोले मैं तो दर्शन पाना चाहता था, एक बार ये रूप भी दिखा दीजिए, क्योंकि इसमें तो आपने मुझे इंगेज कर दिया विष पीने में। तो भगवान ने बोला देखो शिव, ये अभिलाषा गलत है, छोड़ दो। अब क्या करना चाहिए था, शिव जी को छोड़ देनी चाहिए थी कि नहीं छोड़ देनी चाहिए थी, क्योंकि कृष्ण ने बोल दिया छोड़ दो तो छोड़ देनी चाहिए, लेकिन वो बोले नहीं मैं तो देखूंगा। भगवान कृष्ण का अगर देखना ही चाह रहा है तो चलो एक और लीला कर देते हैं, भगवान तो नाम ही है लीलाधारी। भगवान ने कहा एक और लीला करते हैं, उनको दिखाते हैं कि काम वासना का वेग जो है वो कितना कितना तेज होता है। भगवान ने कहा पछताएंगे शिव, बोले क्या पछताऊंगा प्रभु, दर्शन करूंगा उसके बाद अपने घर चला जाऊंगा वापिस। कहा देख लो, इस काम के तेज में ऐसा होता है कि बुद्धि तक नष्ट हो जाती है। कहा अरे मैं तो धीर हूं, धीरों में धीर बताया गया है, मेरे सामने कामदेव एक बार आ गया था प्रभु तो मेरी नेत्र, तीसरा नेत्र खुल गया, सामने काम और रति दोनों के दोनों नष्ट हो गए, पति पत्नी दोनों भस्म हो गए थे। कृष्ण बोले ठीक है, वो काम भौतिक संसार का काम था, अभी जो तुम्हारे सामने प्रकट होगा ये गोलोक का काम होगा, जो कि शाश्वत रहता है, तुम्हारे तेज से भस्म नहीं होगा। कहा प्रभु जो भी है, अब तो आपने और अंदर से एक्साइटमेंट कर दिया, इतनी ब्यूटी देखने का मन तो कर रहा है, ठीक है देखो भैया पछताना। भगवान ने तुरंत अपना रूप बदल करके मोहिनी रूप धारण किया। जैसे ही मोहिनी रूप धारण किया और भगवान ने मोहिनी रूप धारण करते ही अपने को मोड़े और चलने लगे एक एक कदम। अब उस स्त्री की कमर को देख करके मोहिनी अवतार के भगवान की शिवजी भ्रमित हो गए। जिसे भोले बाबा कहता है संसार, वो शिवजी भ्रमित हो गए। भागवत का चर्चा है ये, कोई कहानी मानसिक कहानी नहीं, भागवत का प्रसंग है। शिवजी पूर्ण रूप से आसक्त होकर स्त्री के पीछे, और भगवान कम थोड़ी है, और आकर्षित करने के लिए गेंद खेलने लगे ताकि वो और पूरे शरीर को निहार सके आराम से। शिवजी भगवान के वो एक एक शरीर के अंग को देख रहे हैं और अंदर से आसक्ति बढ़ती चली जा रही, बढ़ती चली जा रही, बढ़ती चली जा रही है। और पीछे पीछे जा रही पार्वती कह रही है अरे आपको तो पता है प्रभु है, आप क्या कर रही है। कह तू कौन है, हट, अपनी पत्नी को धक्का दे दिया, जिसके पीछे भस्मासुर दीवाना था उसी को धक्का दे दिया, पीछे हटा दिया। पार्वती कह रही है काम इतना तेज हो गया इनके अंदर, क्या हो गया, ये तो इतने धीर व्यक्ति हैं, कामदेव जल गया था, क्या हो रहा है? जलते गए, चलते गए, चलते गए, कई गहन जंगलों के अंदर चले गए। तब जाकर के जब उन्होंने कहा रुक जाओ मोहिनी, रुक जाओ, एक आलिंगन प्रदान कर दो, मेरी इच्छा पूर्ण कर दो, एक आलिंगन खाली, बस और कुछ नहीं। तो भगवान अंदर से बड़ा हंस रहे थे, बोले देखो क्या ये भोले बाबा की क्या हालत कर दी है इस टाइम, पूरा पिघल चुके अंदर से। तो उन्होंने आकर के रुक गए, भगवान पीछे से आके पकड़ लिया, आंख बंद कर ली, बोले मोहिनी मोहिनी मोहिनी। फिर देखा चार हाथ निकल आए भगवान के, नारायण रूप ले लिया। बोले अब जैसी चार हाथ देखे हुए हुए, गिल्टी ऐसी हुई ना अंदर से, ये क्या किया मैंने, बहुत गिल्टी कॉन्शियस हो गए। बोले प्रभु ये क्या कर दिया, संसार बड़ा हंसेगा मेरे ऊपर, एम्स में बैठ के एक प्रभु जी कथा सुनाएंगे, सब लोग हंसेंगे बैठ के, मेरी बड़ी बेइज्जती होगी, क्या करूं? भगवान ने कहा चिंता मत करो भोलेनाथ, आपकी स्थिति सदा ही वैष्णवों में श्रेष्ठ रहेगी, लेकिन मैं यहाँ ये दर्शाना चाहता था कि देवी ऐसी गुणमयी मम माया दुरत्तया, बहुत मुश्किल है, शिव जैसा उत्तम कृतगिरी का भक्त भी उससे बच नहीं सकता, तुम्हारी तो स्थिति क्या है? सोच के हम अपनी स्थिति को सोचे, हम सोचे चार माला कर ली तो हम तो अब तो बड़े भारी भगत जी हो गए, कुछ नहीं होता। शिव जी जैसे रात दिन कैलाश पे भजन करने वाले की ये स्थिति है, ये तभी हो सकता है जब हम कृष्ण को प्रसन्न कर ले, कृष्ण हमें बुद्धि प्रदान कर दे। और कब होता है? गुरु और वैष्णवों के अनुगत्य के अंदर, शरणागति शेल्टर के अंदर। जब तक गुरु का शेल्टर नहीं, वैष्णव का शेल्टर नहीं, क्योंकि गुरु शुद्ध भक्त है, शुद्ध भक्त का कहना कृष्ण मानते हैं, शुद्ध भक्त कहेगा कृष्ण ये आया बेचारा कामी है, क्रोधी है, लोभी है, मैं इसको अपना शेल्टर दे रहा हूं, प्लीज इस पर कृपा मर्सी करना थोड़ा सा कि इसका काम वश में हो जाए। गुरु जी नहीं हो रहा है, अरे होगा होगा भगवान करो करो हो जाएगी। इसलिए गुरु वैष्णव का अनुगत त्याग करके कोई डायरेक्ट सोचे हम तो जी वृंदावन जाएंगे, वृंदावन में रहेंगे, वृंदावन में भजन करेंगे कुटिया बना करके, कुछ नहीं होगा। पांच छह स्त्रियां होंगी, एक मटका भरती होगी, भोग चलता होगा, सोते होंगे, खाते होंगे आलू के पराठे, मारते होंगे खराटे, लेकिन भक्ति नहीं होगी वहां पे। इसलिए वृंदावन जाना है या कहीं पे भी जाना, इसी श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी ने बहुत अच्छा एक श्लोक दिया है। कहते हैं भागवत के अंदर दसवें स्कंद में आया है, यस्यात्मा बुद्धि कुढ़े पये त्रिधातु के स्वधिम कलता त्रिदेशु भौम इज्जधि यतिर्बुद्धि सलिले नाम कहिश्चा जने विज्ञेशु स एव गोखरहा। जो मनुष्य इस त्रिधातु निर्मित शरीर को आत्मा स्वरूप जान बैठता है, सोचता है मेरा शरीर ही मैं हूं, जो अपने शरीर को मैं मानता है, जो देह के विकारों को स्वजन समझता है, देह के विकार तो मेरे अपने हैं, ये काम तो मेरा है, क्रोध तो मेरा है, इसीलिए तो बात बात पर यूज कर लेते हैं, अपना समझते हैं, जब ये जानेंगे मेरा नहीं है तो यूज करने में डरेंगे। जो जन्म भूमि को पूज्य मानता है, बस जो कुछ भी है हमारा गांव, किसी से बोलो आप कहाँ के, बोले जी हम मथुरा के, हम भी मथुरा के इतना खुश हो जाता है ना, अपनी भूमि से उसकी आसक्ति समाप्त नहीं होती, बहुत अटैचमेंट है हम लोगों को। सोचो भूमि से इतनी है जिसमें रहते नहीं, तो अपने शरीर से कितना जिसमें सारा दिन रहते हैं, जिस दिन छूटता है मृत्यु के समय, छाती पे बैठकर शमशान घाट तक जाता है व्यक्ति, उसको बहुत रुदन होता है, दुख होता है, अरे जला रहे मेरे शरीर को, अरे मेरे बच्चों मैंने तुम्हें खिला पिला के इसीलिए बड़ा किया था, जला दो मुझे, रोता है, छूटता नहीं है, तो बहुत रुदन होता है उस समय। तो जो जन्म भूमि को पूज्य मानता है और जो तीर्थ स्थलों की यात्रा दिव्य ज्ञान वाले पुरुषों से भेंट करने के लिए नहीं, दिव्य ज्ञान वाले पुरुषों से भेंट करने के लिए नहीं, तीर्थ यात्रा में किस लिए जाता है लौट के बताऊंगा। हाँ जी चार धाम कराए प्रभु जी, चार धाम किस लिए गए, कथा सुनी, कौन है बद्रीनाथ, बोले ये तो पता नहीं प्रभु जी, मजा बहुत आया, ठंडा एकदम 0 डिग्री सेल्सियस ऐसा पानी, मजा आ गया प्रभु जी, मजे लेने गए थे। यहाँ लिखा है जो दिव्य ज्ञान वाले पुरुष के भेंट करने के लिए नहीं तीर्थों में मजे लेने के लिए जाते हैं, अपितु स्नान करने के लिए जाते हैं, ठंडे पानी में गर्म पानी में, एक ठंडा पानी एक गर्म पानी। हम तीर्थ में गए थे प्रभु जी, वहां ऐसा ऐसा ऊंचे ऊंचे मंदिर, मोटे मोटे पत्थर, हाथी खड़े ऐसे, इसलिए गए थे हाथी देखने, चिड़ियाघर चले जाओ, अपितु स्नान करने के लिए जाता है उसे, अब बुरा मत मानेगा ये भगवत गीता में लिखा है, उसे गधा के समान समझना चाहिए, गोखर गधे के समान, खरा गधा व्यक्ति है। अब लोग आकर हमें कई बार बोलते तो मुझे श्लोक याद आ जाता है, अब मैं उनके मुंह पे तो नहीं बोल सकता हूँ, अरे बड़े गधे हो आप, कुछ सुना नहीं कुछ किया नहीं आगे लौट कर ऐसे, लेकिन बोल नहीं सकते, बुरा मान जाएंगे लोग, क्योंकि देह से भी तो शरीर से आ सकती है, आपने हमें गधा कह दिया। तो इन चीजों को हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम भगवान की भक्ति में लगे वैष्णवों के अनुगत में। वृंदावन धाम, मायापुर धाम, जगन्नाथपुरी धाम भक्तों के साथ में जाएं, तो लोग जाते हैं भक्तों के साथ में भी, लेकिन उनका मेन मकसद होता है श्रवण के बजाय दर्शन। अधिक से अधिक चीजों को देख लें, एक ही बार में बरसाना घूम लें, नंदगांव घूम लें, 84 कोस घूम लें और शाम को घर जाके बताएं हमने घूमा है, हमने वो भी देखा, हमने वो भी देखा, हमने वो भी देखा। देखने थोड़ी गए, देखना है फोटोग्राफ में देख लो, मोबाइल में देख लो, वहां जाकर के उसका रस स्वादन करना, शुद्धिकरण करना, लीला स्थली की कथा सुनना, वो इम्पोर्टेंट है। तो प्रभुपाद जी वर्णन कर रहे हैं इस भागवत के श्लोक को लेकर के कि व्यक्ति कामासक्त है, इच्छाओं की पूर्ति के लिए वो ऐसे कार्य कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसका मन उसको नियंत्रित नहीं है, उसकी बुद्धि नष्ट होने की कगार पे है, जो कि काली पट्टी से आवरण आ गया है, दिख नहीं रहा उसको सही क्या है गलत क्या है। और सही गलत का निर्णय देने के लिए ही भगवान कृष्ण ने अर्जुन को ये गीता का ज्ञान दिया, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, निर्णायक ग्रंथ, निर्णय लेने वाला ग्रंथ। इसको पढ़े और अपने जीवन में निर्णय लें कि लहसुन प्याज खाना ज्यादा जरूरी है या भगवान को समझना ज्यादा जरूरी है। बोले जी 50 साल हो गए अब छूटता नहीं, शरीर भी तो छूटेगा एक समय, मरने के बाद छूटा तो क्या छूटा, उससे पहले छूट दो। 33 करोड़ देवी देवता है, भगवान कृष्ण का भजन करने को बोलो, बोले अरे अभी नवरात्रे आ रहे हैं प्रभु जी, हम तो पिछले 30 साल से व्रत रख रहे हैं, छोड़ दे। हम छोड़ने को नहीं बोल रहे हैं, हम ये बोल रहे हैं कि स्थिति समझो, दुर्गा माई भगवान नहीं है, भगवान की सेविका है, शिव जी भगवान नहीं है, भगवान के वैष्णव है, भक्त है, कृष्ण जो है वो भगवान है, इसलिए भगवान का भजन करिए। और इन सब जितनी भी मनोकल्पिक धारणाएं इस विश्व में बड़ी चर्चित है, प्रसिद्ध है, उनको उनको त्यागें, उनसे ऊपर निकलें, है ना। और एक सही रूप से परंपरागत ज्ञान को स्वीकार करके हरि नाम का भजन करें, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा।